Market Monster. Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh.
Namaskar, Ranga, aur namaskar, Shrotaon. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai, aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual funds se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी, बहुत धन्यवाद आपका।
पहले हेडलाइंस के साथ रंगावश्य।
थैंक यू सुबोध। द टॉप स्टोरीज। डोमेस्टिक मार्केट्स राइज नियरली 2% दिस वीक ऑन एनकरेजिंग इकोनॉमिक डेटा। साउथ वेस्ट मॉनसून मेक्स इट्स ऑनसेट ओवर निकोबार आइलैंड्स टुडे, सेज द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। And Dalal Street to witness 2 IPOs and 8 listings next week.
उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों से इस हफ्ते देश के शेयर बाजारों में लगभग 2% का उछाल। मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मॉनसून निकोबार द्वीप समूह पहुंचा और दलाल स्ट्रीट में अगले हफ्ते 2 IPOs और 8 लिस्टिंग्स।
And now for all the details. Domestic equity markets rose nearly 2% this week on encouraging economic data. The Sensex at the Bombay Stock Exchange surged 1,341 points or 1.9% during the week to end at 74,006 yesterday. The Nifty at the National Stock Exchange gained 447 points or 2% during the week to close at 22,502. Both Sensex and Nifty conducted a special trading session on Saturday to evaluate their disaster preparedness in the event of major disruptions. The markets gained as the consumer inflation or CPI came in lower than the previous month, increasing hopes for a rate cut. Retail inflation also eased to an 11-month low of 4.83% in April against 4.85% in March this year.
जी, अब कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से संजय हमारे साथ हैं। संजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
सर, फॉर डूइंग एसेट एलोकेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी व्हिच कैटेगरी एंड डूइंग रीबैलेंसिंग व्हिच कैटेगरी ऑफ डेट फंड इज मोस्ट सुटेबल।
In my opinion, the most suitable category for your long-term fixed income investing and, by virtue of that for any asset allocation rebalancing as well, would be categories like short duration funds and corporate bond funds. These are generally the categories which maintain very high quality exposures into bonds. Refrain from taking any undue risks and are capable of delivering reasonably stable yet moderate returns, which is how ideally you should your expectation framework should be from your debt allocation. So look at categories like short duration corporate bond for your fixed income allocation and also rebalancing from time to time.
Right. Let's take our next caller. We have Yogesh joining us from Delhi. Good evening, Yogesh, and welcome to the program.
जी शुक्रिया आप सभी का। आशुतोष जी को नमस्कार। आप सबको नमस्कार।
जी
सर, मेरा सवाल ये है, मेरे दो सवाल हैं। एक है कि माइक्रो कैप में निवेश के लिए क्या अभी कोई म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं और क्या एक्टिवली म्यूचुअल फंड माइक्रो कैप में भी काम कर रहे हैं कोई। दूसरा सर मेरा सवाल है कि इन्वेस्टर होने के नाते क्योंकि मार्केट मंत्रा में बहुत सुनता हूँ, तो मैं अपने आप को एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह से देखता हूँ। तो एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या जिम्मेवारियां हैं जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके प्रति? क्या सिर्फ भाव ऊपर हो जाए और हम मुनाफा कमाएं? क्या ये जिम्मेवारी है? जब कंपनी मुश्किल दौर से गुजरे तो एक इन्वेस्टर की क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके साथ?
देखिए, आपका पहला सवाल माइक्रो कैप को लेकर, तो एक मोतीलाल का निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड मौजूद है जो कि एक्टिवली मैनेज नहीं होता। जैसा कि नाम उसका सजेस्ट करता है, वो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में आपका सारा पैसा मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है। तो अगर किसी को माइक्रो कैप में ही खासा फोकस तरीके से इन्वेस्ट करना है तो एक ये फंड ऑल्टरनेटिव है। लेकिन मेरे हिसाब से अब ब्रॉडली स्मॉल कैप कैटेगरी जो है उसमें जितने फंड्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में एक डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा लगाते हैं। कुछ उनमें छोटी कंपनीज भी होंगी, कुछ अमंग द लार्जर स्मॉल कैप्स भी होंगी। तो आप अपना स्मॉल कैप एलोकेशन देखिए और उसके अंदर ही आपका माइक्रो कैप भी सब्ज्यूम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको एक बहुत ही फोकस्ड माइक्रो कैप एक्सपोजर चाहिए तो ये जो एक मैंने मोतीलाल का फंड बताया ये है।
या एंड आशुतोष, अबाउट हिज सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड टू टेक ओनली द प्रॉफिट्स और डज ही हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज ही सेड यू नो इवन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी?
सी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर शुड डू। आई मीन आई डोंट थिंक वन शुड गेट इन टू मच इन टू द डिस्कोर्स अराउंड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ensured that the company is managed and governed appropriately, and your money, the capital which you have given to the company, is also put to good use in an appropriate way and in legitimate way. If you find that the management is doing something wrong, you as a shareholder you have a right to vote on the resolutions that come. And if you think that the company has lost all the merit for which you invested, then you always have the option to vote with your feet and exit the company. So think about it that way. You are invested in a company for its long-term rewarding potential. At any given point of time, if you think the company has lost its mojo on these counts, maybe it's time to exit.
जी रंका, मतलब आशुतोष के कहने का मतलब है कि आप पैसे के मामले को पैसे का मामला रखें, इमोशनल ना बना दें।
exactly, yeah.
अगले कॉलर है दिल्ली से महेश, स्वागत है आपका महेश, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज लाइक बिटवीन सो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बिटवीन टू फंड्स ऑफ ए फंड हाउस इज अलाउड, बट इज देयर एनी, इज इट पॉसिबल फॉर थ्रू एनी ऐप और समथिंग एसटीपी बिटवीन टू फंड हाउसेज? Is there any possibility? Next question is, if we stick to the only index funds for the in the mutual fund houses, is it advisable or you know, you suggest to go for the multi asset and all?
Sure. So regarding your first question regarding STP between two fund houses, well, there is no automatic route to it, but you can put it on autopilot. You can simply plan your SWP from the fund which you are looking to exit, and maybe with a gap of 3 to 4 days, you can plan the SIP in the fund in which you want to redirect that money.
But Ashutosh, that is essentially redeeming a fund and then investing afresh.
Exactly. But that is also what STP is, just that both the legs of the transaction, the redemption and well as the purchase within the fund house, can be managed a little more seamlessly. Otherwise, there is no other difference. All the exit load implications, all the tax implications still apply even on an STP the way it would on a buy and sell. So from the taxation or the cost implications are no different, just that it makes the whole process a little more seamless. But there is no such option available for doing a systematic transfer between two different fund houses. Therefore, the only route that you can take is to set up your SWP from one fund and an SIP in the target fund. But by doing that, remember that the money would still be routed through your bank account. So the redemption proceeds would hit your bank account in about T+2 duration and then onwards into the next fund. So that's why you should keep a difference of 2 to 3 days between your redemption leg and the investment leg.
Right. And now let's go across to Indore in Madhya Pradesh, from where we have Anil joining us on Market Mantra. Good evening and welcome to the program.
Anil speaking from Indore.
Ji.
Sir, hamara is samay ek म्यूचुअल फंड है वो कई बैंक पहले जैसे एसबीआई का है, आईडीबीआई का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, एलआईसी का है, तो जो सीनियर सिटीजन है जो पेंशनर है उनके लिए चारों पार्ट
में। अनिल जी आपका प्रश्न हम ठीक से नहीं सुन पाए, आप एक बार दोहराएंगे।
जो म्यूचुअल फंड है ना
जी,
अलग अलग बैंकों के भी सदा उपलब्ध है
जी,
एसबीआई का है, सीबीएसई का है, आईसीआईसी बैंक का है, आईडीबीआई का है, एलआईसी का है,
हाँ।
तो जो पेंशनर लोग है जो रिटायर है उनके लिए सबसे अच्छा है
जी, जो अलग अलग हाउसेस के फंड है, जो अब नया निवेशक है, छोटा निवेशक है या पहली बार निवेश करने वाले लोग हैं, वो कैसे चुनाव करें, शायद यही जानना चाहते हैं, या कौन सा चुने।
देखिए एक नए निवेशक के लिए दो मेरी सलाह रहेंगी, आप जो आपको रूट ज्यादा समझ में आए आप वो अपना सकते हैं। पहली बात तो नए निवेशक हैं, अनफेमिलियर हैं, जानकारी की कमी है, आप अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चॉइस को नहीं करना चाहते, आप सिंपल तरीके से एक इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी फंड हाउस का निफ्टी इंडेक्स में निवेश करने वाला एक फंड लें और उसमें अपना एसआईपी शुरू कर दें। तो ये सारे फंड तकरीबन एक जैसे हैं, इनमें बहुत कम डिफरेंसेस हैं, तो चॉइस करना जो कि अलग अलग फंड कंपनी का ये अच्छा है या ये अच्छा है, उससे आप बच जाते हैं और आप शुरुआत कर पाते हैं। और जब आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जानकारी में वृद्धि होती है, उसके बाद आप और बड़े निवेश के फैसले ले सकते हैं। तो एक तो ऑल्टरनेट ये है। दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर लगता है, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड देख सकते हैं। उसमें मैं आपको दो तीन नाम सुझाव के तौर पर आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड, मेरा एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, इस तरह के ये दो तीन फंड हैं, इनमें से आप कोई भी एक या दो फंड लेकर इनमें निवेश शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका करीब एक चौथाई पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, जिससे कि जब भी मार्केट गिरती है तो ये थोड़ा कम गिरते हैं, तो साइकोलॉजिकली एक नए इन्वेस्टर को खराब बाजार में मार्केट में टिके रहने में ये सहयोग देते हैं, इसलिए नए निवेशकों के लिए ये फंड एडवाइजेबल रहते हैं
जी। अगले कॉलर है मध्य प्रदेश से वीरेंद्र। वीरेंद्र स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
सर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर
जी नमस्कार।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सर मार्केट में जैसे हमको ट्रेडिंग या इसका सर हमको नॉलेज प्रॉपर सर बेसिक टू एडवांस लेवल का प्राप्त करना है, तो सर हम इसको कैसे और कहां से प्राप्त करेंगे सर?
देखिए पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक शुरुआती निवेशक हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको आपके लिए जो ये कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, आपको निवेश करने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आपको बहुत सारे एक्टिवली कहां निवेश करना है, कैसे अच्छी कंपनी का चुनाव करें, ये डिसीजन आपको खुद नहीं लेना होता। तो आप एक शुरुआत कर पाते हैं विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क योर सेल्फ इन ट्राइंग टू डिसाइड एंड डी कोड विच आर द इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स। बाकी देखिए मैं कोई एक स्पेसिफिक आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि आप कंपनियां जो आपको कुछ इंटरेस्ट आते हैं आप उनको ट्रैक करिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, उनके उन कंपनीज की जो मैनेजमेंट है वो क्या अपने फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के, इन सब चीजों के बारे में आप धीरे धीरे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी आपको जानकारी होगी और शायद आप थोड़े कॉन्फिडेंट बन पाएंगे।
राइट एंड
हाँ अच्छा रंगा आप कुछ पूछ रहे थे।
या नो लेट्स टेक अ कॉलर फर्स्ट एंड
हाँ एक लेकिन इसी पर बात थी कि क्या कोई ऐसा कोर्स है या कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है कि कोई अगर मार्केट में निवेश करना चाहता है, इस तरह का काम शुरू करना चाहता है, तो जैसे म्यूचुअल फंड के भी हैं एडवाइजर होते हैं, उसके लिए कोई कोर्स है या कहां से उसके सर्टिफिकेशन कहां से होते
हैं? देखिए एनआईएसएम कुछ कोर्सेज रन करते हैं, आप एनआईएसएम गूगल पे सर्च करेंगे, एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, उनके कुछ कुछ कोर्सेज हैं मार्केट्स को लेकर, इक्विटीज को लेकर, स्टडी मटेरियल भी उनके होते हैं, आप चाहे तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं।
राइट And now let's go across to Jaipur in Rajasthan, where we have Jitendra joining us on Market Mantra. Good evening and welcome to the program.
हाँ हाँ same to you. Thank you. Sir, ये बताइए कि क्या fund नया fund house जो है वो कौन उसको allow करता है नया fund house बनाने के लिए, SEBI करता है या कोई और, और क्या मापदंड से उसको मतलब कौन सी क्रिया से उसको allow करता है कि आप मतलब fulfill कर fund house चलाने के लिए?
Okay.
देखिए, नई एएमसी सेटअप करने के लिए सेबी इज द ऑथराइजिंग एंटिटी. सेबी रेगुलेटर हैं जिनके परव्यू के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आते हैं, और इनके लिए काफी सारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एक प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड जो भी एंटिटी है, कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कंप्लायंस की काफी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं. सो एक काफी सारी इनकी रेगुलेशंस हैं. आप सेबी पर जाके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो दस्तावेज है आपको मिलेगा, वहां पे जो रेगुलेशंस गवर्निंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उसको आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसको बारीकी से पढ़ें और सब्जेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि सेबी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइसेंसिंग के लिए.
जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं. दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ने देश के सबसे दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून अगले 48 घंटों में मालदीव के कुछ हिस्सों और कोमोरिन क्षेत्र तथा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर की तरफ बढ़ रहा है. मॉनसून के 31 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है. इस बीच मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश जारी रहने की संभावना है. 21 मई तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है.
Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashwani. And just to remind our phone numbers are 2331-4444, 2331-0464, and we have a third dedicated line as well, that's 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. Let's continue with our phone calls. We have Prem Kumar joining us from Delhi. Good evening, Prem, and welcome to the program. Yes, Prem, do we have you online?
Hello.
Yeah, go ahead, put your question.
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में हमें जाना है तो हमें कितना अमाउंट मंथली जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाले कुछ ठीक से समझा नहीं पाते, क्योंकि उनको गाइड करने का तरीका नहीं पता या तुमको टाइम नहीं है. एक मैनेजर बोलते हैं कि इसमें जाना बेनिफिट में रहेगा, एक मैनेजर बोलते हैं इसमें कोई फायदा नहीं है. हमें ये समझ नहीं आता कि कैसे कहाँ से समझे इस बात को, कि हमें कितना मंथली मिनिमम जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है.
राइट, देखिए, मिनिमम से मिनिमम म्यूचुअल फंड एक काफी टेलर मेड व्हीकल है छोटे निवेशकों के लिए, आम निवेशकों के लिए. और मिनिमम अमाउंट कितना है वो वैसे तो फंड टू फंड डिफर करता है, लेकिन आजकल बहुत सारे फंड 500 रूपये प्रति माह के एसआईपी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ फंड 100 रूपये, इतना ही नहीं, कुछ नवी जो एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, नवी के कुछ फंड 10 रूपये प्रति माह से भी एसआईपी शुरू करते हैं. तो आप काफी छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, 100 रूपये 500 रूपये प्रति माह के निवेश से. और मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, हर किसी की अपनी राय अलग होती है कि म्यूचुअल फंड प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, उनमें जाना है कि नहीं जाना है. मेरी राय यह है कि आप ये निर्णय खुद करिए, आप एक छोटे अमाउंट से निवेश करके शुरुआत करिए. 8-10 महीने निवेश करेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि चीजें कैसे रन होती हैं, और आप शायद खुद ये डिसीजन अपने लिए लेने में सक्षम होंगे, एक ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको जाना है कि नहीं. जैसे एनएससी अपने इन्वेस्टर एजुकेशन टैगलाइन इस्तेमाल करता है, सोच कर समझ कर निवेश कर, तो मेरे ख्याल वही आपको भी करना चाहिए.
एंड बट आशुतोष, मेनी टाइम्स इट इज सीन, यू नो, व्हेन अ कस्टमर अप्रोचेस अ बैंक, बिकॉज बैंक इज इनटू मेनी अदर थिंग्स एंड दे काइंड ऑफ यू नो पुश देयर प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली एफडीज. So, whom should a retail investor approach? Because banks many a times try to push their ULIPs or, you know, some hybrid investment, you know, vehicles and...
See, if you are internet savvy, if you can manage your bank account and other transactions online, then you are not really bound by a distributor or a banking channel to be able to start your mutual fund investing journey. These days, there are a whole lot of fintech apps which have completely democratized the journey of investing or getting started in mutual funds. You can set up your mutual fund investments in barely 10 to 15 minutes. If you have an Aadhaar card, a PAN number, and a bank account which has online access. You just need to download one of these apps and follow the on-screen instructions, and in about 15 to 20 minutes you can onboard. And then if you are not KYC'd as a first-time investor, I presume you are not KYC'd, it can take up to 2 days to complete your KYC, and then you can simply make your first SIP investment. So these days investing is not only convenient and seamless but also secure. So for any new investor, by regulation and by design of the product, a lot of the ill effects or a lot of apprehensions have been taken care of.
Ji, agle caller hai Delhi se Pradeep. Pradeep, swagat hai aapka, sawal puchhe.
Good evening Market Mantra team.
Good evening
sir. Main mutual fund mein last 7 years invest kar raha hun sir, और अभी सर मैंने ना एक साल से शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है सर. तो होता क्या है सर, कोई शेयर अगर नीचे होता है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ सर, और लेकिन जब मेरी एसआईपी की डेट आती है मेरे पास पैसे ही नहीं होते सर, तो मेरे को फिर एसआईपी स्किप करनी पड़ती है. तो क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है क्या सर मेरे लिए?
देखिए आपको इस बात पर, आप इक्विटी में आप निवेश कर रहे हैं चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सोच समझकर जानकारी के साथ खुद से इक्विटी मार्केट में निवेश करने में सक्षम है तो वो भी स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है. लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लंबे समय के लिए निवेशक हैं, आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा पा रहे हैं. जैसे कि आपने बताया कि कोई स्टॉक गिरता है आप वो खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप उसमें बने रहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते रहते हैं, पैसा निकालते रहते हैं, तो आप अगर आप अपनी पूंजी बढ़ा नहीं रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 7 साल में अगर आपने अपनी पूंजी बढ़ाई नहीं है, या एक अपने बुढ़ापे के लिए या किसी और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपने अगर इस पैसे को जमा नहीं किया है और उसको बढ़ाया नहीं है, तो आपकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं गलत है. एसआईपी का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लॉन्ग टर्म में आप निवेश करते चलते हैं और लंबे समय में आप एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर पाते हैं अपने कोई भी फाइनेंशियल नीड के लिए. तो अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर ये एस्पेक्ट फुलफिल कर पा रहे हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप निवेश करते हैं फिर निकाल लेते हैं और कोई बात बन नहीं रही है, आप कुछ अमीर नहीं बन रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आप ये सिर्फ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको तुरंत बंद करें और अपने एसआईपी पे ध्यान दें.
राइट, लेट्स गो डाउन साउथ नाउ. वी हैव सौरभ ज्वाइनिंग अस फ्रॉम हैदराबाद. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र.
नमस्कार मार्केट मंत्र.
नमस्कार.
इन एनपीएस द स्कीम परसेंटेज ऑफ इक्विटी बॉन्ड्स एंड अदर्स कैन बी चोजन. If the equity percentage is chosen around 70 to 75, this NPS investment can it be equated or compared with aggressive hybrid mutual funds? And secondly, does NPS invest in stock directly in the equity percentage or also through MF route?
Right. Yes, Ashutosh.
Sure. So regarding your first question, yes, absolutely. If you choose a 70 to 75% equity allocation in your NPS account, then what you're basically, the risk reward outcomes that you can expect to get would be somewhat similar to aggressive hybrid funds only. So you are absolutely right on that. Your second question regarding investment into stock markets, well, NPS has appointed certain pension fund managers who invest your money in equity markets on your behalf. So NPS as such is an entity which in turn has appointed these pension fund managers. When you go and open your NPS account, you have to choose which pension fund manager you want to be managing money on your behalf. And once you, let's say, choose HDFC, then your money would be routed into the HDFC schemes, equity scheme or corporate bond scheme or whichever scheme you choose, and in turn their fund managers would be managing your money.
Right, and before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news items that we are following. Indian stock markets will witness a busy week with opening of 2 initial public offerings or IPOs and 8 listings next week. Apart from IPOs, several key corporate result announcements are also scheduled next week. Among the IPOs, Office Space Solutions will launch its public offer to raise 599 crore rupees. The IPO will be open for subscription on the 22nd of May and will close on the 27th of May. GSM Foils will hit the market next with subscription opening on the 24th of May. Besides eight new listings, including Go Digit General Insurance, which attracted significant investor interest last week, will be happening this coming week. The markets will also witness corporate earnings results from companies like ITC, ONGC, IRCON, BHEL, Bell, Sun Pharma, Nykaa, Hindalco, Ashok Leyland and Divi's Lab this coming week.
Ji, agle caller hai Mumbai se Ganpati. Aapka swagat hai, sawal puchhein.
Yeah, good evening to all of you. This is my first call. Ji. I just wanted to ask, what is the utility of arbitrage funds, of mutual funds, and what are the tax aspects of investing in arbitrage funds? Thank you.
Sure. To answer your second question first, arbitrage funds get the tax treatment similar to an equity fund. So if you hold the units for more than 1 year, your capital gains will be charged at the rate of 10%. If you hold for less than 1 year, you will be subjected to tax at the rate of 10%. Now coming to the utility, these are low risk, relatively low risk, low return kind of products. You can expect returns which can be somewhat similar to a liquid fund, so 5, 5.5, 6% thereabout, or somewhere in between liquid funds and short duration funds. Since your money is always hedged, although they invest all your money in equity markets, but they never take a unidirectional exposure to the equity markets, so to say. They always buy and they sell, you know, in an equal proportion. So all your exposure is completely hedged. So therefore, you are not subjected to the ups and downs of the equity market. And therefore, the returns are also, you know, not significantly higher than what you can expect from a liquid fund. So low risk, low return, if that's what you are looking for, then arbitrage funds can appeal to you.
Yeah. And Ashutosh, many of our callers and retail investors, you know, put this question, there are so many fund houses, there are so many, you know, funds. Is there some kind of an ideal number of funds which you would, you know, prescribe for any small investors to have, whether it is, you know, 4 funds or whether it is 40, 30, you know, where does that number exactly lie?
Sure. So as a rule of thumb, there is no precise science to that, but it's a very important question that you put, Ranga. So the idea is that for most investors, as a rule of thumb, 4 to 5 mutual fund schemes should be more than enough. Because remember, each scheme in itself carries a portfolio which can have 30, 40 or maybe much more number of stocks in itself. So each fund in itself is a diversified portfolio of several securities. When you combine 4 to 5 funds, you have ample diversification. Beyond that, you would have little to achieve in terms of diversification, but you may just end up owning the entire market. So 4 to 5 funds to start with can be good enough. And if you are a small ticket investor, you are just starting off with an SIP of 1000 or 2000, maybe start with only a single fund. Okay. And as your SIP amounts increase, maybe you can add 1 or 2 more funds. But for most investors, that is more than sufficient diversification.
Okay. What should be the target have a complete range of the market, entire spectrum should be covered with, say, 3 or 4 funds?
I'd say simply go for flexi-cap funds, which will give you those outcomes by themselves in a very hands-off way.
जी आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
जी धन्यवाद आपका
And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we wind up, let's take a look at the top stories. Domestic markets rise nearly 2% this week on encouraging economic data. Southwest monsoon makes its onset over Nicobar Islands today, says the Indian Meteorological Department. And Dalal Street to witness 2 initial public offerings and 8 listings next week in the stock markets. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant Sunday evening. Market Mantra.